अमृत है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
रास्ता है वीरान। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि आमोस जो एक साधारण व्यक्ति था, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, गूलर की डालियों को काटा करता था, परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए भविष्यद्वाणी करने के लिए बुलाया और वही आमोस परमेश्वर के वचन को लेकर के गया। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें और उस महान सत्य को जान सकें जिसे आज आप हम में से हर एक के जीवन में देना चाहते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में आपने हम सबकी सहायता की है कि हम आपके वचन का अध्ययन करने पाए, आमोस नबी की पुस्तक से सीखने पाए। आज जब हम फिर से आपकी निकटता में आकर आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, हमारे जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन जाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, बुरी संगति से और हर एक प्रकार के शैतान के छल प्रपंच से आप हम सब की रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश, चिंतित और परेशान है। पिताजी, आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें, उन्हें अपने निकटता में लाएं, ताकि एक एक जीवन आपके वचन के द्वारा धन्य होने पाए। आज आप हम सब से बोले, बातचीत करें और हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आमोस को इस्राएल के विनाश के तीन दर्शन दिखाए, जिनमें से दो में तो आमोस ने इस्राएल की मध्यस्थता की और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, परंतु तीसरे दर्शन साहुल पर उसने इस्राएल की मध्यस्थता नहीं की। उनका एक बड़ा पुजारी अमस्याह था, जिसने आमोस को स्वदेश लौट जाने की धमकी दी। तो आमोस ने उसे परमेश्वर का वचन सुनाया कि उसकी पत्नी वेश्या बनाई जाएगी और उसके पुत्र पुत्री तलवार से काट डाले जाएंगे और वह पराये देश में जाकर मरेगा। इसके बाद परमेश्वर ने उसे एक और दर्शन दिखाया, फलों का टोकरा, अर्थात इस्राएल का अंत आ गया है, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम आमोस की पुस्तक और उसके आठवें अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आइए हम सब आगे बढ़ने से पहले अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं और आज के वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखें, क्योंकि अध्याय 8 जिसमें आमोस का कहना है फलों से भरी टोकरी का दर्शन, जी हां, यह चौथा दर्शन संपूर्ण अध्याय 8 में है। इस दर्शन का अर्थ समझना अति महत्वपूर्ण है। इससे हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें स्पष्ट समझ में आएंगी। तो आइए हम आमोस की पुस्तक उसके अध्याय 8 के पहले पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आमोस 8 उसके 1 पद में, परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। ध्यान दीजिए, फलों के बारे में तो जो कहा जाए वह कम है। मुझे फल बहुत पसंद है, मुझे सब फल अच्छे लगते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां के फलों का आनंद अवश्य लेता हूं। फलों की टोकरी से अधिक आकर्षक और कुछ नहीं है, परंतु इसमें एक संदेश निहित है। सबसे पहले तो फलों की टोकरी फसल आने का संकेत देती है और यह भी दर्शाती है कि पेड़ों से फल समाप्त हो रहे हैं। मेरे पास एक पेड़ है और पेड़ ने बहुत फल दिए, परंतु अब वहां केवल टहनियां हैं। फसल समाप्त हो चुकी है, अगले वर्ष तक अब उसमें फल नहीं लगेंगे। अतः स्वादिष्ट फलों की टोकरी यह भी दर्शाती है कि फसल समाप्त हो गई है। मेरे प्रियो, फलों की टोकरी फल खराब होने का भी संकेत देती है। हमारी एक सेविका मित्र है जो आने वाली थी, अतः हमने उसके लिए कमरा सजाया, परंतु वह एक सप्ताह विलंब से आई। मैंने उसके लिए फलों की एक टोकरी बगीचे से तोड़कर रखे थे। उसके विलंब के कारण हमने कमरा तो बंद कर दिया, परंतु फल उठाना भूल गए। जब वह आई तब हमने कमरा खोला तो वह फलों के सड़ने की दुर्गंध से भर गया था। अतः फलों के टोकरी में परमेश्वर का एक संदेश है। परमेश्वर वास्तव में एक सजीव एवं व्यवहारिक उदाहरण हमें देता है। आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। अध्याय 7 में हमने देखा है कि परमेश्वर इसराइल को दंड देने जा रहा था, परंतु आमोस की मध्यस्थता के कारण वह रुक गया। अब फलों का टोकरा संकेत देता है कि फसल समाप्त हो चुकी है, इसराइल का समय पूरा हो गया है, उन्हें दंड दिया जाएगा। कटनी इसका प्रतीक है। मेरे प्रियो, कटनी दंड का प्रतीक है और एक युग बीत जाने के बाद दंड आता है। मेरे विचार में यदि हम कटनी का अभिप्राय ना समझे तो प्रभु यीशु के वचनों का अर्थ समझना कठिन होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 37 और 38 पद में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, पके खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु यीशु उस युग के अंत समय में यह वचन कह रहा था, जब व्यवस्था का युग समाप्त होने पर था। जी हां, प्रभु यीशु क्रूस के मार्ग पर था और वह कह रहा था कि वह लौने वालों को संपूर्ण इसराइल में जाते हुए देखना चाहता था। उसकी मृत्यु के बाद दृश्य बदल गया। अब वह बीज बोने वाले का समय है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह हमारे लिए है। जी हां, बीज बोने की बात है, बीज बोना है। यह बीज बोने का समय है और यह हमारा काम है। बीज बोना मन परिवर्तन लाना है। परमेश्वर का काम है कि वह मन को परिवर्तित करे। परमेश्वर का आत्मा वचन के बीज से परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न करेगा। हम लौने वाले नहीं हैं। कटनी का अर्थ है दंड। इसका अर्थ है एक युग समाप्त हो गया। मैं यथा संभव प्रयास करता हूँ कि वचन का प्रचार करूँ। काश मैं सब विश्वासियों को प्रेरित कर पाऊँ कि परमेश्वर ने जो कहा है वह करें। परमेश्वर के वचन का बीज बोना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन के बीज को बोएं, ताकि उस स्थान पर परमेश्वर के लिए एक नया जन्म, एक नया व्यक्ति आने पाए। क्या आज आप परमेश्वर के वचन का बीज बो रहे हैं? यदि आप अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है, न कि प्रभु के दासों की जो प्रचार के कार्य को करते हैं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात को समझना है। आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति का स्थान विलाप के स्थान में बदल जाएगा और उल्लास का स्थान रोने का स्थान बन जाएगा। जी हाँ, हर जगह लाश ही लाश होंगी। यह एक भयानक भविष्यवाणी है और बहुत कठिन और डरावना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा इसराइलियों के साथ करने वाला है। आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 4 पद में लिखा है, यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। फिर से कहता है परमेश्वर, फिर गरीबों के शोषण की चर्चा कर रहा है। यद्यपि मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं और यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम गरीबों के प्रति परमेश्वर की भावनाओं को समझें। वह उनसे प्रेम करता है, वह उनकी चिंता करता है। मेरे प्रियो, मैं भी गरीब था। मेरा पिता प्रति शनिवार अपना वेतन लेकर के आते थे और दवाई, राशन और जो भी घर की जरूरत की बातें हैं हमें देते थे। एक बार उनके पास अंत में एक ही पैसा बचा तो उन्होंने मुझे वह एक पैसा देकर कहा कि मैं टॉफी ले आऊं। उस समय एक पैसे में बहुत टॉफी आ जाती थी, 5 पैसे में 5 टॉफी मिलती थी। मैंने और मेरी बहन ने वह टॉफी बांट ली। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन को पीछे की ओर मुड़ करके देखता हूं तो मैं परमेश्वर के आशीषों को देखने पाता हूं। जब मैं 14 वर्ष का था तब मेरे पिताजी कठिन परिश्रम से हम सबों को भोजन देते थे। मेरी माँ और बहन वे हमारे कार्यों में मदद करते थे और उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने इंटर का एग्जाम दिया और तब परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे मन फिराव और सेवा में आने के निर्णय में कुछ लोगों ने मेरी सहायता की, विशेष करके मेरे कलीसिया के पादरी साहब ने। मैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए आगे गया और परमेश्वर की सेवा के लिए निकल पड़ा। अतः मैं गरीबों की सेवा के उपक्रमों के पक्ष में हूं, परंतु उनके पक्ष में नहीं जो अपनी जेब भरते हैं। मुझे ऐसे उपक्रम अच्छे लगते हैं जिनमें गरीब अपने पांव पर खड़े हो जाएं और अपने जीवन के लिए जीविकोपार्जन का कार्य करने पाएं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको वचन के साथ साथ उन गरीबों का भी ध्यान करना है। परमेश्वर इसराइल को दोष देता है कि वे गरीबों को निगलना और नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते थे। उनके गरीब ऐसी दशा में थे कि फिर कभी न उठ पाएं। अभक्त देशों में गरीब बहुत दुख उठाते हैं, इस तथ्य का खंडन कोई नहीं कर सकता है। जहां पर क्रूरता है वहां पर गरीब सताए जाते हैं, कष्ट उठाते हैं और अमीर अपने जीवन का, अपने धन का लुप्त उठाते हैं। आमोस 8 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें और छल से दंडी मारें। यदि आप उस समय वहां होते, विशेष करके यरूशलेम में, तो सोचते परमेश्वर क्या कह रहा है। आप उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए संस्कारों की पूर्ति करते देखते, परंतु परमेश्वर उनके मनों को जांचता है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो मन को जांच सकता है। लिखा है नया चांद और विश्राम दिन उनके पर्व थे, उन दिनों में वे लेन देन नहीं कर सकते थे। परमेश्वर कहता है कि धनवान आराधना में भी अपने लेन देन में बेईमानी की बात सोचते थे कि आने वाले दिन वे क्या छल करेंगे, ग्राहकों को कैसे धोखा देंगे। सप्ताह भर तो वे पाप करते ही थे, आराधना में भी वे पाप का ही षड्यंत्र रचते थे। यह इसराइल का और आज का कैसा उत्तम चित्रण है। लोग आज दिन भर यही योजना बनाते हैं कि कैसे मैं पैसा बनाऊं, कैसे मैं दूसरों को ठगूं। ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके विचारों को देखता है, न कि आपके उन बाहरी कार्यों को जिसे आप दिखावा के रूप में लोगों के सामने रखते हैं। आमोस कहता है 8:6 में कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। क्या ही अद्भुत बात है। कहता है हम कंगालों को रुपया देकर मोल लें। मूसा की व्यवस्था में मनुष्य को मोल देकर दास बनाया जा सकता था। एक जोड़ी जूती में मनुष्य को खरीद लेना, इससे प्रकट होता है कि मनुष्य का मूल्य क्या था। वे गरीबों को अन्न का बचा हुआ कूड़ा बेचते थे, जिसे प्रायः फेंका जाता था। मेरे प्रियो, मुझे गरीबों को पुराने कपड़े देना भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को बचा हुआ सामान देना भी अच्छा नहीं है। मुझे एक दूध वाला कहता था कि उसके पास थोड़ा सा मक्खन निकाला हुआ दूध बचता है और यदि मैं चाहूं तो उसे पी सकता हूं, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, अर्थात पादरी हूं। परंतु मैंने वह दूध कभी नहीं लिया कि वह मुझे उपकार दिखाए और परमेश्वर पर एहसान करे। दूसरा सामुएल की पुस्तक 24:24 में दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जानबूझकर मंदिर में दान देना देख रहे थे। यह क्या उसका काम था? जी हाँ, वह जानना चाहता था कि हम उसे कितना देते हैं और कितना अपने पास रखते हैं। आज लोग महीना की तनख्वाह घर में लाते हैं और 100 रुपया परमेश्वर के लिए और बाकी अपने लिए रखते हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि ये सारे महीने परमेश्वर ने उन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखा ताकि तंदुरुस्त रहकर उस पैसे को कमा सकें। और इसी बात को परमेश्वर हमारे जीवन में भी देखता है। मुझे आमोस से प्रेम है क्योंकि वह मेरी भाषा शैली काम में लेता है। वह भी एक गरीब मनुष्य था और वह जो कहता है मैं समझ सकता हूं। देखिए, आमोस समझ रहा है कि वह इसराइल को फलों का टोकरा क्यों कह रहा है, क्योंकि उनकी भलाई फलों के समान शीघ्र समाप्त होने वाली थी और उसका एक प्रमाण उनका गरीबों के साथ व्यवहार था कि वे किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करते थे। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप आमोस की बात को समझ रहे हैं या नहीं, परंतु इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता है और वह चाहता है कि हम उन गरीबों का कद्र करें, उनको हम सही न्याय दें और इसी के द्वारा हम परमेश्वर को भी प्रसन्न कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यहां आज मुझे और आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में भलाई को देखें, क्योंकि लिखा है कि इसराइल को फलों का टोकरा क्यों कहा गया है और वह क्यों उन्हें फलों का टोकरा कह रहा है, अर्थात समय निकट है, न केवल उनके लिए लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि भलाई के द्वारा हम परमेश्वर के निकटता में उन कार्यों को ला सकते हैं और आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने परमेश्वर के दास के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे ताकि आप भले कामों में आगे बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
अपनी मर्जी।